मानव मात्र समान है, किंतु अगर हम इस बात को छोड़कर परिस्थितियों के आधार पर समानता की खोज करें, वस्तुओं के आधार पर समानता को खोज करें तो नहीं कर सकते। तो आज हमें और आपको इस मौलिक प्रश्न पर बहुत गंभीरता से विचार करना है कि हम अपने सुख दुख का कारण जो दूसरों को मानते रहते हैं अथवा मानते हैं, वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, और इस बात को स्वीकार करने का जो फल होगा, सच पूछिए कि उसका महत्व मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और न आप किसी के व्यक्त किए हुए महत्व को जान सकते हैं। ये तो जब आप प्राप्त कर लेंगे तभी आप इस महत्व को जानेंगे, और इस महत्व को जानकर आपको अपने पर एक पश्चाताप होगा और एक हंसी आएगी कि हाय हाय, ऐसा सुनहरा मानव जीवन, ऐसा सुंदर मानव जीवन जिसको हमने केवल इस भूल से बर्बाद कर दिया कि हमारा सुख का कारण अमुक था, हमारा सुख का कारण हमारा सुख का कारण अमुक वस्तु है, अमुक व्यक्ति है, हमारे दुख का कारण अमुक व्यक्ति है, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि देखिए, साधन में एक बात का वार ध्यान देना चाहिए, और वो बात ये है कि आप ये मत सोचिए हम बहुत भारी भारी साधन करेंगे, बहुत बड़े बड़े साधन करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप केवल एक बात अपने सामने रखिए कि कोई भी साधन का एक अंग, कोई भी साधन आप स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करके उसको जीवन में रख दीजिए। देखिए, साधन का जीवन में रखना श्रमसाध्य नहीं है, श्रमसाध्य नहीं है, साधन का जीवन में रखना स्वीकृति साध्य है, स्वीकृति साध्य है, कि जहां आपने ये स्वीकार कर लिया कि अब हम किसी को भी अपने सुख दुख का कारण नहीं मानेंगे। अब यहां कोई भाई तर्क कर सकता है, और ये तर्क कर सकता है कि भाई ये कैसी बात हो सकती है जबकि हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं कि अमुक व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, और जब हम जानते हैं कि अमुक व्यक्ति से हमको सुख मिल रहा है, तो मैं तो ये भी कह दूंगा कि इस जानकारी को आप मिथ्या मानिए, झूठ मानिए, अपने इंद्रियों के ज्ञान का धोखा मानिए। बोले क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि अमुक वस्तु हमको सुख दे सकती है, रसगुल्ला खाने से हमको बड़ा सुख मिला, और हमें तो कहता हूं कि अगर भूख न होती तो नहीं दे सकता था। एक बात, दूसरी बात यह है कि वस्तु जो मिलती है वो किसी विधान से नहीं मिलती है, और विधान जो बनता है वो हमारे हित को लेकर न बनता है। अगर आपको सुख मालूम भी होता है कि अमुक व्यक्ति ने हमको सुख दिया, अगर आपको ये मालूम भी होता है कि अमुक व्यक्ति ने आपको दुख दिया, तब भी आपको यही सोचना चाहिए ये तो ऊपरी बात है, ये सुख दुख तो किसी और के द्वारा भेजा हुआ है, और जिसके द्वारा भेजा हुआ है वो हमारा अपना ही है, वो हमारा अपना ही है। तो किस लिए भेजा है? कि सदुपयोग के लिए भेजा है, सदुपयोग के लिए भेजा है। तो ये सदुपयोग के लिए क्यों भेजा है, क्यों भेजा है? कि अगर सुख दुख का हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो सुख दुख से अतीत का जो जीवन है उसमें प्रवेश नहीं होगा। ये सुख दुख तो हमारे विकास में हेतु है, और हमारे अपने प्यारे का भेजा हुआ है। तो जिस प्यारे का भेजा हुआ सुख दुख है, अगर उसमें आपकी दृष्टि है, तो बताइए उस सुख के उपयोग में, दुख के उपयोग में आपको कोई कठिनाई होगी? कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज हमसे भूल क्या होती है कि सुख दुख का भोग करने लगते हैं, उसका उपयोग नहीं करते, उसे साधन सामग्री नहीं मानते, उसे अपना जीवन मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि मानो ये जबरदस्ती हमारे ऊपर लाद दिया गया है। पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है, बात तो बिल्कुल ऐसी है कि आप हमारे मन में अगर सुख बोलने का राग न होता तो श्रोता के रूप में प्रभु कभी नहीं आते, अगर आपके मन में सुनने का राग न होता तो कोई वक्ता कभी नहीं आता, ये नियम ही है। तो ये जो कुछ आपको मिलता है वो आपकी राग निवृत्ति के लिए मिलता है, और जो कुछ आपसे छिनता है वो भी सरकार राग निवृत्ति के लिए छिनता है। तो राग निवृत्ति के लिए ही सुख दुख का उपयोग है, और इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए भाई राग रहित होने में हम लोग तत्पर हो जाएं, और ये नहीं धीरे धीरे नहीं, अगर इस कार्य को आप धीरे धीरे करेंगे تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں کر پائیں گے. اور اگر آپ ابھی کرنا پسند کریں گے تو پرتیک بھائی کر سکتا ہے. وستو نہ ملے لیکن وستو کا راگ مٹا سکتے ہیں. مٹا سکتے ہیں نہیں مٹا سکتے. تو بھائی راگ رہت ہونے کا اپائے کیا ہے؟ دویش رہت ہونا. اور دویش رہت ہونے کا اپائے کیا ہے؟ اپنے دکھ کا کارن کسی اور کو نہیں ماننا. تو جو اپنے دکھ کا کارن کسی اور کو نہیں مانتا ہے وہ اپنے سکھ کا کارن بھی کسی اور کو نہیں مانتا ہے. ایسے ہی جو اپنے سکھ کا کارن کسی اور کو نہیں مانتا ہے وہ اپنے دکھ کا کارن بھی کسی اور کو نہیں مانتا ہے. تو ان دونوں میں سے جو آپ کو سگم معلوم ہو کہ بھائی آج سے ہم اپنے دکھ کا کارن کسی اور کو نہیں مانیں گے, اگر یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو جائے تب بھی آپ بڑی سگمتا پوروک دویش سے رہت ہو کر پریم کو پراپت کریں گے. اور جب آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارے سکھ کا کارن کوئی وستو ہو ہی نہیں سکتی, کوئی ویکتی ہو ہی نہیں سکتی, کوئی سرشٹی مل کر ہم کو سکھ نہیں دے سکتی. کیوں نہیں دے سکتی؟ کہ ہماری جو واستوک مانگ ہے, ہماری جو آوشیکتا ہے, اس کی پورتی میں سرشٹی سرودا اسمرتھ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا وچار تو کیجیے. ساری سرشٹی میں آپ کو کون سی وستو ایسی معلوم ہوتی ہے جو سوئم پرکاش ہو, جس میں پریورتن نہ ہو, جس کا ویوگ نہ ہو؟ ہے کوئی وستو کسی بھائی بہن کو معلوم ہوتی ہے؟ نہیں معلوم ہوتی. نہیں ہے, نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پر پرکاش وستو سوئم پرکاش کو مہتو پردان کرے گی؟ ذرا سوچیے. آج تمہارا بھی الٹی گنگا بہ گئی, الٹی گنگا بہ گئی. مانو جیون تو ایسا سندر جیون تھا کہ جس سے وستو آدر پاتی تھی مہاراج, لیکن آج کتنا دکھ ہوتا ہے کہ آج کا مانو وستو کے آدھار پر سوچتا ہے کہ ہمارا مہتو ہو گیا, ہمارا مہتو ہو گیا. اس پرماد میں مانو کو مانو نہیں رہنے دیا. اور بھائی میرے, جب تک مانو مانو نہیں ہو پاتا تب تک نہ تو اس کو چیر شانتی ملتی ہے, نہ اس کی سدگتی ہوتی ہے, اور نہ اسے پربھو کی پراپتی ہوتی ہے. یہ نرواد ستیہ ہے. اس لیے بھائی آج وستوؤں کے دوارا جو آپ اپنا مہتو آنکھتے ہیں وہ مت آنکھیے, اپتو اپنے دوارا پراپت وستوؤں کا سدوپیوگ کیجیے, جس سے وستو کا مہتو بڑھے, ویکتی کا مہتو بڑھے. لیکن آپ جو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہائے ہائے رے کہ ہمارے پاس وستو نہیں ہوئے گی, تب تو ہم سنسار کے آدمی نہیں رہ سکتے. اور رہ بھی سکتے ہیں تو ابھاگے ہیں, دین ہیں, دکھی ہیں. تو میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ وستو کو اپنے سے ادھک مہتو دینے والا ویکتی, چاہے ارب پتی ہو, کھرب پتی ہو, مہادین ہے. کیوں؟ ارے بھائی, اس سے بڑھ کر اور کیا دینتا ہوگی, اس سے بڑھ کر اور آپ کیا دینتا ہوگی کہ وہ جو جلارا جسے آپ کہتے ہیں پتھر کا ٹکڑا, جو کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جلارا ہوں, اس کو پہن کر آپ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے آدمی ہو گئے. تو پتھر کا ٹکڑا بڑا آدمی ہو گیا مہاراج. لوہے لنگل میں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں بڑے آدمی ہو گئے. اینٹ مٹی میں قید ہو کر آپ کہتے ہیں بڑے آدمی ہو گئے. کیڑوں کے پاخانے کو پہن کر آپ کہتے ہیں بڑے آدمی ہو گئے. جانوروں کی اون پہن کر آپ کہتے ہیں بڑے آدمی ہو گئے. ذرا سوچیے تو صحیح, گمبھیرتا سوچیے تو صحیح. ملموتر پورن شریر کو سجا کر آپ کہتے ہیں بڑے آدمی ہو گئے. اگر ملموتر پورن شریر کے سجانے سے بڑے آدمی ہوتے ہیں تو میں تو ایسے بڑے پن کو بھائی نمسکار کرتا ہوں. آپ سوچیے, گمبھیرتا سوچیے. آپ کا ایک اپنا بڑاپن ہے, آپ کا ایک اپنا مہتو ہے, آپ کی ایک اپنی سندرتا ہے, اور وہ سندرتا راگ دویش رہت ہوئے بنا پراپت نہیں ہوتی. اس لیے بھائی آج اس جیون کے آوشیک پرشن پر ہمیں اور آپ کو وچار کرنا ہوگا کہ ہم اور آپ کیسے بڑے آدمی ہو سکتے ہیں. آدمی تو بڑا ہوتا ہی ہے, لیکن کیا بڑاپن ہمارا ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو بڑاپن ہے, وہ بڑاپن ہے چر شانتی کی ابھیویکتی میں, وہ بڑاپن ہے امرتو کی ابھیویکتی میں, وہ بڑاپن ہے پرم پریم کی ابھیویکتی میں, جس کی پراپتی میں مانو ماتر سرودا سوادھین ہے. کبھی پرادین ہوا نہیں, کبھی پرادین ہو سکتا نہیں. کیوں؟ اس سے جاتی ایکتا ہے, سوروپ کی ایکتا ہے, جس سے ہماری جاتی ایکتا ہے, جس سے ہماری سوروپ کی ایکتا ہے, उसकी प्राप्ति में हम कभी भी पराधीन नहीं है और जिससे हमारी मानी हुई एकता है जाति एकता नहीं है उसकी प्राप्ति में हम कभी भी स्वाधीन नहीं है। इतना ही नहीं मानी हुई एकता से जब हम अपना महत्व आंकने लगते हैं तब हमारा महत्व यही होता है कि वस्तु की एकता से महत्व होता है लोभ की उत्पत्ति और व्यक्ति की एकता से महत्व होता है मोह की उत्पत्ति और परिस्थितियों की एकता से महत्व होता है परछिन्नता की अभिव्यक्ति। तो ये जो परछिन्नता जीवन में आ गई लोभ आ गया मोह आ गया काम आ गया तो क्या आप समझते हैं यही महत्वपूर्ण जीवन है? अगर यही महत्वपूर्ण जीवन है तो फिर भाई निंदनीय जीवन कौन सा हो सकता है? मैं तो नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त कोई निंदनीय जीवन हो सकता है। तो आज हमें और आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हमारा अपना जो महत्व है हमारी अपनी जो सुंदरता है उस सुंदरता से हम विमुख न हो उस महत्व को हम न भूलें। तो वो हमारा आपका महत्व है राग द्वेष रहित होने में। तो राग द्वेष रहित होकर हम और आप अपने वास्तविक सुंदरता को भी जान सकते हैं वास्तविक महत्व को भी जान सकते हैं और उसके प्राप्त करने का उपाय है एकमात्र अपने सुख दुख का कारण किसी दूसरे को न मानना। ये बात जब हम और आप स्वीकार कर लें और उसके पश्चात क्या होगा कि जो चित्त इधर उधर भटक रहा था सुख की आशा के लिए और दुख से बचने के लिए वो चित्त सब ओर से हटेगा और हट करके अपने आप अपनी ओर बढ़ेगा अपनी माने स्व की ओर बढ़ेगा। तो जैसा जैसा स्व की ओर बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसा चित्त शांत भी होता जाएगा स्वस्थ भी होता जाएगा। और सच पूछिए तो समर्थ भी होता जाएगा और जैसा जैसा चित्त समर्थ होता जाएगा वैसे वैसे जो वास्तविक जीवन से आज दूरी मालूम होती है भेद मालूम होता है वो दूरी और भेद मिटता जाएगा। जिसके मिटते ही जो आज हमें ये मालूम होता है कि हमारा चित्त है वो विभू हो जाएगा और विभू होने से वो जो आपकी सुंदरता है वो जो आपकी महत्ता है वो सुंदरता भी विभू हो जाएगी। और जब वो महत्ता और सुंदरता विभू हो जाएगी तो सच पूछिए समस्त विश्व में सुंदरता की अभिव्यक्ति होने लगेगी। और जब समस्त विश्व में सुंदरता की अभिव्यक्ति होने लगेगी तो फिर भाई सुंदरता से भिन्न फिर और कुछ रह ही नहीं जाएगा। सुंदरता कहते किसको है जिसका त्याग न कर सके। बहुत से भाई कहते हैं ये स्थान बड़ा सुंदर है लेकिन थोड़े दिन बाद चलने लगते हैं। हम उनसे पूछे भैया सुंदर छोड़कर क्यों जाते हो? स्थान बड़ा सुंदर था जाते क्यों? ये अब नहीं रह सकते तो असुंदर हो गया ना। जिसका आप किसी भी प्रकार से त्याग कर सकते हैं वो सुंदर हो नहीं सकता। इससे ये सिद्ध हुआ कि हमें उसको प्राप्त करना है कि जिसका हम त्याग कर ही नहीं सकते। जरा सोचिए कि जिसका आप त्याग कर ही नहीं सकते क्या उसमें प्रेम नहीं होगा? क्या उससे योग नहीं होगा? क्या उसका बोध नहीं होगा? अवश्य होगा। किंतु जब तक हम उसकी ओर देखते हैं कि जो हमारा त्याग करता है, जरा ध्यान दीजिए, जब तक हम उसकी ओर देखते हैं जो हमारा त्याग करता है तब तक भाई हमारी गति विधि उस ओर हो ही नहीं सकती जिसमें अनंत सौंदर्य है। अनंत सौंदर्य की ओर हम तभी बढ़ सकते हैं कि जब हम उसकी ओर न देखें जो हमारे बिना रह सकता है। अब आप विचार कीजिए कि आपके बिना कौन रह सकता है? तो आपके बिना वही रह सकता है जो अपने को अपने आप प्रकाशित करने में हेतु नहीं है इन समर्थ नहीं है, है? तो अपने को अपने आप प्रकाशित करने में कौन समर्थ नहीं है? آپ کا پیارا ہاتھ, آپ کی پیاری اندریاں, آپ کا پیارا پران, آپ کا پیارا من, آپ کی پیاری بدھی اپنے کو اپنے آپ پرکاشت کرنے میں سمرتھ نہیں ہے. اس سے یہ سدھ ہوا کہ ان سب کے بنا ہم رہ سکتے ہیں, یہ سب ہمارے بنا رہ سکتے ہیں. لیکن ایک آپ کو بڑی وچتر بات بتائیں, جس سمے آپ ان سب کے بنا رہ سکتے ہیں نا, اور آپ ان سب کے بنا رہ سکتے ہیں, اور آپ جب اپنی ممتا کا پتھر ان سب سے ہٹا لیتے ہیں, تب معلوم ہے کیا ہوتا ہے, تب ایک ایسے الوکک جیون کے ویکتی ہوتی ہے کہ یہ سب اپنا بھیس بدل بدل کر, اپنا بھیس بدل بدل کر, اپنے استتو کو کھو کر آپ کے استتو سے ابھن ہونے لگتے ہیں, ابھن ہونے لگتے ہیں. اور جب یہ آپ کے استتو سے ابھن ہونے لگتے ہیں تو آپ پھر کیا ہوتے ہیں کہ آپ انت کے پریت ہو جاتے ہیں, انت کے پریت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے سہیوگ سے آپ ہو گئے آسکتی, اور ان کے بیوگ سے آپ ہو جائیں گے پریت. تو آپ کا استتو کیا رہے گا؟ اس انت کی پریت. اور پریت جس کی ہوتی ہے اسی کی جاتی کی ہوتی ہے, اسی کی جاتی کی ہوتی ہے. لیکن ایک اس میں ولکشنتا ہوتی ہے پریت میں, وہ ولکشنتا یہ ہوتی ہے کہ پریت ملی رہتی ہے, پریت کا نتیہ یوگ رہتا ہے, لیکن نتیہ یوگ رہنے پر بھی نتیہ ویوگ بھی رہتا ہے, نتیہ یوگ رہنے پر نتیہ ویوگ بھی رہتا ہے. تو بولے بھائی نتیہ یوگ سے کیا, کہ نتیہ یوگ سے تو چر شانتی ملتی ہے, امرت ملتا ہے, دیو چن میں جیون ملتا ہے. اور نتیہ ویوگ سے, بولے نتیہ یوگ سے اگاد انت رس کی ابھیوکتی ہوتی ہے. تو اگاد انت رس کی ابھیوکتی, دیو چن میں جیون کی پراپتی مانو ماتر کو ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اور اس کا سیدھا سادہ اپائے کیا نکلا؟ راگ دویش رہت ہونا. اور راگ دویش رہت ہونے کا اپائے کیا نکلا؟ کہ اپنے سکھ دکھ کا کارن کسی اور کو نہ ماننا. اب اتنا سہج سادھن اور اتنا سگم سادھن بھی یدی ہم نہیں کر سکتے, ذرا سوچیے تو کیا سادھن کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے جپ کرنے کی سوچتے ہیں, بڑے بڑے انوشٹھان کرنے کی سوچتے ہیں, بڑے بڑے دان کرنے کی سوچتے ہیں, لیکن یہ بھی کبھی سوچتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ اپنے دوارا کر رہے ہیں کہ پراپت وستوؤں کے دوارا کر رہے ہیں, کہ پراپت ویکتیوں کے دوارا کر رہے ہیں, کے دوارا کر رہے ہیں. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو وستوؤں کے دوارا آپ کر رہے ہیں, جو ویکتیوں کے دوارا آپ کر رہے ہیں, وہ آپ کی چیز نہیں ہے, وہ آپ کی چیز نہیں ہے. آپ کی چیز تو وہی ہو سکتی ہے جسے آپ اپنے دوارا کر سکیں. تو اپنے دوارا ہم اور آپ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ کا کارن کسی اور کو نہ مانے, ہم اپنے سکھ کا کارن کسی اور کو نہ مانے. یہ بات پرتیک بھائی پرتیک بہن اپنے دوارا کر سکتے ہیں. اس بات کو کرنے کے لیے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں, پیر ہلانے کی ضرورت نہیں, کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں. یہ بات تو ہم اور آپ اپنے ہی دوارا کر سکتے ہیں. تو جو سادھن ہم اپنے دوارا کر سکتے ہیں اس سادھن کے کرنے میں پرادھینتا نہیں رہ سکتی, ایک بات. دوسری بات ہے کہ جو اپنے دوارا سادھن کیا جائے گا اس کا پھل اپنے ہی کو ملے گا, اور دوسروں کے دوارا جو سادھن کیا جائے گا اس کا پھل دوسروں کو ملے گا. آپ وچار کیجیے وستو کے سدوپیوگ سے آپ کو بہت سی وستویں مل جاتی ہیں, بہت سی وستویں مل جاتی ہیں. تو وستو کے دوارا وستو ہی کی پراپتی نہ ہوئی, تو جب وستو کی پراپتی ہوئی تو وستو تو آپ کو پراپت تھی, یہی نہ کہیں گے کہ ماترا کم تھی اب ادھک بڑھ گئی. تو کم ماترا اور ادھک ماترا ہونے سے کوئی واستوکتا میں انتر نہیں ہوتا. اگر واستوکتا میں انتر ہوتا تو آج تک ہمیں کوئی نہ کوئی دھنی ایسا ملنا چاہیے تھا تو جو یہ کہہ دیتا کہ ہم دھن کا اپارجن نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو بھائی سچ پوچھئے, واستوکتا کی درشٹی سے ایک سادھارن مزدور اور مل آنر ایک سا دکھتا ہے. مزدور بھی سوچتا ہے کہ پیسے کچھ مل جائے, اور بھائی مل آنر بھی سوچتا ہے پیسے کچھ مل جائے. ایک کسان بھی سوچتا ہے کہ ہمارے کھیت کی پیدا کی ہوئی چیز مہنگی بک جائے, اور ایک مل آنر بھی سوچتا ہے کہ ہماری فیکٹری سے نکلی ہوئی چیز مہنگی بک جائے. تو ہمیں تو وستو استھتی میں کوئی انتر نہیں معلوم ہوتا. کیوں نہیں معلوم ہوتا؟ کہ وہ جو اپنے دوارا جو چیز نہیں کی گئی ہے اس کا پھل سمان رہتا ہے, तो ये साधन वही सार्थक सिद्ध होता है जो अपने द्वारा किया जाए, और अपने द्वारा किया हुआ साधन में दो तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यही हो सकती है कि भाई हम किसी को दुख सुख का कारण अपना न माने, ये अपने द्वारा हो सकता है। और दूसरा कि भाई हम किसी में श्रद्धा कर लें, ये अपने द्वारा हो सकता है। अथवा हम किसी की ममता तोड़ दें, ये अपने द्वारा हो सकता है। तो ममता रहित होना अपने द्वारा हो सकता है, किसी में श्रद्धा करें ये अपने द्वारा हो सकता है, अपने सुख दुख का कारण किसी और को न माने ये अपने द्वारा हो सकता है, किसी का बुरा न चाहें ये अपने द्वारा हो सकता है, सभी का भला चाहें ये अपने द्वारा हो सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो साधन अपने द्वारा हो सकता है उस साधन से सिद्धि होती है, और जो साधन अपने द्वारा नहीं हो सकता पराश्रय द्वारा होता है तो उस साधन से बाह्य विकास तो दिखाई देता है, बाह्य विकास तो दिखाई देता है लेकिन अपने को कुछ नहीं मिलता, अपने को कुछ नहीं मिलता। इसलिए भाई आज हमें और आपको अपने द्वारा साधन करने की बात भी सोचना चाहिए, और इस पर विचार करना चाहिए कि भाई कल्पना करो कि हमारे में बोलने की शक्ति न रहे तब हम साधन कर सकते हैं कि नहीं, सुनने की शक्ति न रहे तब हम साधन कर सकते हैं कि नहीं, देखने की शक्ति न रहे तब हम साधन कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई बाह्य वस्तु न रहे तो हम साधन कर सकते हैं कि नहीं, हाथ पैर न रहे तो हम साधन कर सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से जब आप विचार करेंगे और आप इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि हाँ कर सकते हैं, तो वो जो साधन होगा उस साधन में लेस मात्र भी पराधीनता नहीं होगी, और जिस साधन में पराधीनता नहीं होती उस साधन में असमर्थता नहीं होती, और जिसमें असमर्थता नहीं होती उसके करने में बहुत सुविधा रहती है, और जिसके करने में सुविधा रहती है वो कभी भी असिद्धि देने वाला नहीं होता। इसलिए भाई अपने द्वारा हम क्या कर सकते हैं इस पर जरा विचार करने की जरूरत है, और इसका निर्णय आप जितनी जल्दी कर लेंगे और जितनी जल्दी कर लेंगे और जितना इसको अपना लेंगे उतनी जल्दी आपको सिद्धि हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिद्धि कितने दिन में होगी, कितने समय में होगी। सच ईमानदारी की बात है कि सिद्धि समय पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हम लोग जीवन में समय के अस्तित्व को स्वीकार करके और क्रियात्मक साधन के आधार पर समय का महत्व मानते हैं। वास्तव में सिद्धि के लिए कोई समय अपेक्षित नहीं है। तो क्या अपेक्षित है कि जब हम और आप अपना जाना हुआ असाधन छोड़ देंगे बस साधन की अभिव्यक्ति होगी, और जहाँ साधन की अभिव्यक्ति होगी वहाँ सिद्धि होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि असाधन का त्याग, साधन की अभिव्यक्ति और सिद्धि ये सब युगपद हैं। इसलिए भाई हम सब जब चाहे तब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये बात समझ में इसलिए नहीं आती कि हम लोगों ने सिद्धि के संबंध में न जाने क्या क्या सुन रखा है, साधन के संबंध में न जाने क्या क्या सुन रखा है। सीधी सादी बात है भाई, सिद्धि का असली अर्थ क्या है? नित्य योग की प्राप्ति। सिद्धि का असली अर्थ क्या है? अमरत्व की प्राप्ति। सिद्धि का असली अर्थ क्या है? परम प्रेम की प्राप्ति। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि नित्य योग की प्राप्ति क्या कालांतर में होगी? अगर कालांतर में होगी तो अब योग नहीं है तो फिर योग कैसे हो जाएगा? अमरत्व की प्राप्ति क्या उसके द्वारा होगी जो अब नहीं है? क्या प्रेम की प्राप्ति उसके द्वारा होगी जो अब नहीं है? मानना ही पड़ेगा कि प्रेम ऐसे ही हुआ करता है, योग है का ही हुआ करता है, बोध है का ही हुआ करता है। तो भाई जो है अब उससे योग करना है, जो है उसका बोध होना है, जो है उसमें प्रेम होना है। तो योग बोध प्रेम की प्राप्ति ये वर्तमान की वस्तु है, किंतु हो क्यों नहीं पाता? उसका कारण एकमात्र वही है, क्या? राग द्वेष रहित नहीं होते। और राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? कि अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। इस दृष्टि से आज हमें और आपको बड़े धीरज के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इस समस्या को हल करना है कि भाई अब हम कभी भी अपने दुख सुख का कारण दूसरे को नहीं मानेंगे। ये जो आपका मानना होगा इसमें एक बड़ा रहस्य होगा, और वो रहस्य होगा कि आपकी ये मान्यता आप आपको इतना सुंदर बनाएगी कि आपके द्वारा किसी को भय नहीं होगा, किसी को भय नहीं होगा। और जब आपके द्वारा किसी को भय नहीं होगा तो आपको फिर किसी के द्वारा भय नहीं होगा, अर्थात आप सभी को भय से रहित करेंगे और स्वयं भय से रहित हो जाएंगे। जो देश दूसरे देश को अपने दुख का कारण मानता है वो स्वयं भयभीत रहता है और दूसरे देश को भयभीत करता है। जो वर्ग दूसरे वर्ग को अपने दुख का कारण मानता है वो स्वयं भयभीत रहता है और दूसरे को भयभीत करता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने दुख का कारण मानता है वो स्वयं भयभीत होता है और दूसरों को भयभीत करता है। और जो अपने दुख का कारण नहीं मानता वो न स्वयं भयभीत होता है और न उससे कोई दूसरा भयभीत होता है। आज जो आप ये देखते हैं कि संसार में बड़ी शीघ्रता के साथ लड़ाई का सामना निकटता किया जा रहा है, इसके मूल में क्या है? भय, भय और कुछ नहीं। भयभीत होकर ही प्राणी भय देने की सोचता है। इसलिए भाई हम सबको अभय हुआ है और सभी को अभय कर देना है। जब सभी को आप अभय कब कर सकते हैं? जब इस बात को स्वीकार कर लें ईमानदारी से कि हमारे दुख सुख का कारण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए भाई अनेक युक्तियों से अनेक प्रकार से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जब तक हम इस महामंत्र को नहीं अपनाएंगे राग द्वेष रहित हो ही नहीं सकते। और जब तक राग द्वेष रहित नहीं हो सकते तब तक जो करना चाहिए वो होगा नहीं और जो नहीं करना चाहिए उसका नाश नहीं होगा। तो अकर्तव्य का नाश और कर्तव्य की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। और भाई कर्तव्य की अभिव्यक्ति के बिना मिले हुए का सदुपयोग नहीं होगा और जाने हुए का प्रभाव नहीं होगा और सुने हुए में श्रद्धा नहीं होगी और उसके हुए बिना न हम जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, न हम अपने लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, न हम प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ये क्या है? ये है जीवन की एक जीवन का एक मौलिक प्रश्न कि भाई हम सबको अपने लिए, जगत के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध होना है। और हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसी बात नहीं, हो सकते हैं। तो जो हो सकता है उसको न करना और जो नहीं हो सकता है उसको करने की सोचना, यही सबसे बड़ा अकाल है।